हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 5 श्लोक संख्या 15 एवं 16। श्री शुक उवाच, यदा युद्धे सुरदेवा बध्यमाना पिता युद्धे गता सवो निपतिता नोतिष्ठे वस्म भूरिशा यदा दुर्वासशापेन सेन्द्रलोकास्त्रयो नृपा निशिकाशाम्भुवस्तत्र मेषु जातया क्रिया। ये श्लोक हम लोग जो है क्योंकि परफेक्ट नहीं थे उसमें, तो 7 से लेकर 16 तक, 15 तक परफेक्ट नहीं थे, 14 तक, तो एक बार उसको पढ़ लेंगे क्या है। चक्षु का पुत्र, ये 7 का अनुवाद है, चक्षुषा कहलाया, जो छठा मनु था, उसके कई पुत्र थे जिनमें पुरु पुरुष तथा सद्युम्न प्रमुख थे। चाक्षुष मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा मंद्रगुम के नाम से विख्यात था। स्वर्ग का राजा मंद्रगुम के नाम से देवताओं में आप्यगण तथा सप्त ऋषियों में हविष्यमान तथा वीरक प्रमुख थे। इस छठे मंत्र में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने अंश रूप में प्रकट हुए थे। वे वैराज की पत्नी देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजित था। क्षीर सागर का मंथन करके अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुओं के रूप में वे महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर हिल डुल रहे थे। श्री राजू वाच, इतना सुनने के बाद परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण शुभदेव व स्वामी भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे किया? वे कश्यप रूप में जल के भीतर किस लिए रहे और मंदर पर्वत को क्यों धारण किए रहे? देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई? कृपया करके भगवान के इस सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। मेरा हृदय भौतिक जीवन के 3 तापों से विचलित है, किंतु वह अब भी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी भगवान के यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर भी तृप्त नहीं हुआ है। तो सूत गोस्वामी जब बोल रहे हैं, जो नैमिषारण्य में डिवोटीज बैठे हैं, क्योंकि सारी कथा उनको सुना रहे हैं जो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी महाराज के मुंह से सुनी थी, परीक्षित जब बैठे थे तो वही प्रसंग को एज इट इज रख रहे हैं सारे नैमिषारण्य के लोगों के सामने। तो सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, यहां नैमिषारण्य में एकत्रित हैं विद्वान ब्राह्मणों, जब द्वैपायन पुत्र शुकदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और भगवान के यश को और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। तो अब आगे बता रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने क्या कहा। तो आज के श्लोक में अनुवाद में है, श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से, सर्पेंट जो उनके वेपन थे, से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया देवताओं पर, तो अनेक देवता धराशाही हो गए और प्राणों की बलि चढ़ गए, वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजन, उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया हुआ था, तीनों लोग दरिद्रता से प्रभावित थे इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे, इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। तो अनुवाद तात्पर्य नाम शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद की तात्पर्य में बता रहे हैं, ऐसा वर्णन मिलता है कि जब दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी की पीठ पर बैठे देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी एक माला उतारकर इंद्र के गले में डाली, किंतु अभिमान के कारण इंद्र ने दुर्वासा के आदर का ध्यान न रखते हुए वह माला निकालकर अपने वाहन हाथी की सूंड पर पहना ली। पशु होने के कारण हाथी उस माला के महत्व को नहीं समझ पाया, अतएव उसने वह माला नीचे गिरा दी और उसे अपने पैरों से रौंद डाला। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा मुनि ने तुरंत ही इंद्र को समग्र भौतिक ऐश्वर्य से रहित दरिद्र होने का शाप दे डाला। इस प्रकार एक ओर युद्ध कर रहे असुरों से दुखी होकर और दूसरी ओर दुर्वासा मुनि के शाप के कारण देवताओं ने तीनों लोगों का अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य गवा दिया। भौतिकतावादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना भी कभी कभी घातक सिद्ध होता है। भौतिक ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति किसी की परवाह नहीं करता और इस तरह वह महापुरुषों तथा यथावक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करता रहता है। भौतिक ऐश्वर्य की रीति यही है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है, धन दुर्मांध, अर्थात अत्यधिक धन से आदमी अंधा बन जाता है। स्वर्ग में इंद्र तक के साथ यही होता है, तो फिर इस भौतिक लोक के लोगों का विषय में क्या कहा जाए। ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णव एवं संत पुरुषों के प्रति गंभीर होना तथा अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम में जो कि अभी हम लोग इससे पिछले के अध्याय में गजेंद्र की मोक्ष की कथा सुन रहे थे, तो गजेंद्र का हम लोगों ने प्रसंग सुना और पता चला कि उनका जो प्रसंग था, जो गजेंद्र को तो मोक्ष प्राप्त हुआ ही हुआ, लेकिन उसके प्रसंग को सुनने वालों को भी बड़े सारे बेनिफिट बताए कि वो उल्टे सीधे सपनों से भी बच जाते हैं। और खाली कोई व्यक्ति अगर सुबह इस प्रसंग का स्मरण ही कर ले तो भगवान उसको भी क्या देते हैं, अपना वैकुंठ प्रदान कर देते हैं। बताइए गजेंद्र को कितनी मुश्किल से वैकुंठ प्राप्त हो रहा है, और अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह इस प्रसंग को केवल स्मरण ही करता है तो भगवान कह रहे हैं मैं उसको वैकुंठ दे दूंगा। वैकुंठ क्या जगह है, कहां पड़ता है, शनि महाराज से पहले कहां ये वैकुंठ, ये यहां नहीं है, ये कुंठा जगत में नहीं है। ये कुंठा जगत मतलब फुल ऑफ एंजाइटीज एंड टेंशन, दुख से भरा हुआ, और वैकुंठा मतलब जहां पर ये सब नहीं होता। कल हम बात कर रहे थे शाम को यही कि जिस तरह से हमारा जीवन चल रहा है और आसपास का वातावरण है, उसमें कहीं पर भी किसी भी तरह से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, स्पिरिचुअल एंटिटी सोल्स के बारे में और वहां जाने तक के मार्ग के बारे में कहीं कोई डिस्कशन नहीं होता। कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कभी देखा कि न्यूज़पेपर में बताएं आपको या न्यूज में बताएं। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। शालीमार बाग से एक भक्त आखिरी समय में भागवतम पढ़ता हुआ भगवान का चिंतन करता हुआ भगवान के धाम गया। नहीं बताएंगे वो, ये नहीं बताएंगे वो, क्या बताएंगे जिससे इनकी टीआरपी बढ़े। अगर ये उन्होंने बताना शुरू कर दिया तो लोग टीवी देखना बंद कर देंगे, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट किसमें है, T20 में। लोगों का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, लोगों का इंटरेस्ट अपनी एग्जिस्टेंस के सिक्योर, अपनी एग्जिस्टेंस को सिक्योर करने में, फ्यूचर को सिक्योर करने में। तो फिर वो लोग उसी चीज को देखना, उसी चीज को सुनना, उसी चीज से संबंधित काम करते हैं, और जो बेचारे बच्चे पलते बढ़ते हैं वो लोग भी उसी वातावरण को देखकर जद जद आचरण की श्रेष्ठता, श्रेष्ठ लोग जैसे जैसे काम कर रहे हैं हमको भी वही करना है। हर व्यक्ति धन कमाने के पीछे भाग रहा है तो मुझे भी भागना है, वो इस धन का दुरुपयोग कर रहा है तो मुझे भी करना है, वो इस धन से ये करता है तो मुझे भी करना है। तो जब सारे लोग ये कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं फील होता कि जब बताते हैं प्रवचनों के द्वारा कि अगर आप ये करोगे तो यहां जाओगे और ये करोगे तो वहां जाओगे, तो उसको लगता कमाल है, मैं अकेला बच के क्या करूं। जैसे एक बार साधु को हाथ दिखा किसी ने बोला साहब तो कहते तुम कुछ खाते पीते भी, कहते हाँ जी, कहते मांसाह करते, कहते हाँ, कहते राम राम राम, मांसाह करते तो निश्चित रूप से नर जाओगे। वो डर गया, तुम नर जाना पड़ेगा। कहते क्या होता, बहुत मारा पड़ती है वहां। अच्छा, कहते पीते भी तुम्हारे मुझसे स्मेल ना, कहते हाँ पीता भी, ओहो निश्चित रूप से तुम भी पाप लग मिलेगा, बड़ा परेशान होता है। कहते हो कुछ उल्टे सीधे काम भी करते हो, कहते हैं क्या करें, करना पड़ता है, समाज सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। कहता निश्चित रूप से 101% यू हैव टू गो, यू गो नर का खत्म हो गया। कहता एक्चुअली मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, मेरे कुछ दोस्त हैं सोनू आहूजा जी, अरोड़ा जी, अग्रवाल जी, ये सब भी पीते हैं, कहते वो भी जाएंगे, कहते पक्का, कहते हाँ, कहते फिर ठीक है। तो मैं अलग से स्वर्ग जाके क्या फायदा मेरा, जब मेरे सारे दोस्त भी वही हैं तो मैं भी उधर ठीक हूं। तो ज्यादातर लोग दूसरों को देखते हैं कि भाई मैं अकेला नहीं कर रहा हूं, दूसरे भी कर रहे हैं, दूसरे भी मरेंगे, दूसरे भी नर्क जाएंगे, तो फिर मैं भी चला जाऊंगा तो क्या दिक्कत है। एक्चुअली अगर पनिशमेंट किसी एक को मिले ना तो बड़ी हरासमेंट होती है, गलत सारे काम करने एक को मिले तो बड़ी हरासमेंट होती है। उसको खुशी या उसको उसका दुख तब कम होता है जब जब सबको मिले, बड़ा खुश होता है, सुखी फील करता है। हमने एक प्रसंग सुनाया था ना, हमारे जहां पर हम कभी रहा करते थे उस एरिया में मकान बनाने के पीछे झगड़ा हो गया ऊपर नीचे लोगों को, तो नीचे वाले ने ऊपर की कंप्लेन कर दी उसका मकान आगे तोड़ने के लिए, ऊपर वाले ने नीचे की कंप्लेन कर दी इसका भी तो बड़ा, उसका भी तोड़ो, उसका तोड़ गए, नीचे वाले ने कहा कि पूरी कॉलोनी के बने हुए। तो उन्होंने पूरी कॉलोनी तोड़ दी, तब जाकर उनकी सेटिस्फेक्शन हुआ, यस मैं अकेला नहीं हूं, अब सबके टूटे हुए, कोई दिक्कत नहीं। तो समाज इस प्रकार से, श्री राधा राधे रमन कृष्ण बलराम की जय, समाज इस प्रकार से बना हुआ है, एनवायरमेंट इतना दूषित है कि आप चाहे सही होना भी चाहें, आप चाहें कि मैं बचूंगा, मैं बच जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को बचा लूंगा, लेकिन वातावरण इतना दूषित है यह आपको ठीक चलने नहीं देगा। अगर तो आपको बहुत अच्छे पुण्य कर्म नहीं है, भक्तों की बहुत कृपा नहीं है, भगवान के पीछे विशेष कृपा लेकर नहीं आए हैं, तो बहुत संघर्ष है भक्ति वाले रास्ते में, क्योंकि सारे लोग उल्टी दिशा में जा रहे हैं, है ना, और उल्टी दिशा में जाते देख लोगों को लगता है कि नहीं शायद यही ठीक है, हम ही गलत कर रहे हैं, और कुछ समय के बाद लोगों को लगने भी लगता है ऐसा, चाहे बेशक माला भी कर रहे हैं, और अगर श्रवण कीर्तन भक्तों का संग नहीं हो रहा तो कुछ समय के बाद लगता है उसको कि मैं ठीक तो हूं, कि मैं बेचारा तो नहीं बन गया, कहीं मेरे साथ सब ठीक तो हो रहा है। तो इस प्रसंग में हम देखते हैं कि भगवान विशेष आसानी से लोगों को केवल इस बात का श्रवण करने मात्र से वैकुंठ दे रहे, कितना आसान हो गया वैकुंठ जाना, बस उस प्रसंग को स्मरण करना और विश्वास करना उस बात पर। तो अगर ये चीजें, ये कथाएं, ये सारी चीजें हमारे घर में सुबह शाम चल रही होती, आसपास के लोग भी जब रिलेटिव भी आते और पूछते बताओ भागवत में आजकल क्या पढ़ रहे हो, कभी होता है सर कि रिलेटिव घर में आया भागवत के बारे में पूछे कौन सा स्तन चल रहा है, आप कौन सा पढ़ रहे हो आजकल, कुछ बताओ उसमें से कहानी बताओ। रिलेटिव आते हैं, बच्चे बोलते हैं, घर में आते हैं, बच्चे बोलते हैं बेटा कुछ गाना सुना, अंकल जी आए आज, तो क्या सुनाता, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, और ऐसे सर मिला के डांस करता कुछ करता है, तो पेरेंट्स को लगता है देखो ये क्या सीखा है, देखो नया सीखा है कुछ, है ना, वो भी खुश हो रहे हैं, वो भी खुश हो रहे हैं, देखो कितना तेज है हमारा बच्चा। तो ये चीजें आज का आधार बन गई है लोगों का उसकी क्वालिफिकेशन देखने का। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा का पूरा वातावरण ही दूषित रहता है, इसलिए कोई विशेष एफर्ट नहीं करता कुछ नया सीखने का या कुछ अच्छा सीखने का। तो यहां सुखदेव गोस्वामी जी जिनके पास केवल 7 दिन थे, और उन 7 दिनों में जब उन्होंने विष्णु मुनियों की शरण ली तो उनको पता चला कि व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए। तो वो भगवान के विषय में सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं कथा, कथा बोलते बोलते जैसे थोड़ा सा प्रसंग में कुछ नया कुछ आता है तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ मुझे ये भी बताओ ना, अभी गजेंद्र की कथा खत्म हुई, उसके शुरू होने से पहले भी ऐसे कुछ निकला कि एकदम गजेंद्र को मोक्ष मिल गया। भगवान कहते हैं मोक्ष मिल गया, ऐसे कैसे मिल गया, थोड़ा बताओ ना आगे। तो फिर पूरी गजेंद्र की कथा सुनाई। अब गजेंद्र की कथा खत्म करिए तो मनवंतर के बारे में बता रहे थे और अचानक प्रश्न निकल आया क्या कि वो जो देवता थे असुर थे वो ऐसा हुआ क्या? उन्होंने बोला आक्रमण कर दिया देवताओं ने असुरों, है ना, देवताओं पर आक्रमण हो गया असुरों का और बड़े दरिद्र हो गए। तो अब शुद्ध सबको परीक्षित महाराज पूछ रहे ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या किया था इंद्र ने? तो फिर प्रपंच में बता रहे लेकिन आगे ये सब बताएंगे कि स्वर्ग के जो राजा हैं वो इतना अच्छा पोस्ट है, मतलब इतना बढ़िया लोकेशन है, इतना बढ़िया वातावरण रहता है वहां पर इंद्र तृप्ति का कि सारे के सारे देवता इंद्र को नतमस्तक होते हैं। खाना पीना घूमना डांस डिस्को सब चल रहा है ऊपर और एक से एक अप्सराएं नृत्य करते थे। ये जो आज पूरे संसार में आग लगी हुई ना आयुष वाली, ये केवल वहीं जाने के लिए हो रही है। वो लोग कुछ कुरान में कुछ चीजें पढ़ते हैं और उनको लगता है कि ऊपर 72 हुरे मिलेंगे उनको। अगर वो क्या करेंगे वो अपने को बम में अटके यहां फटाफटा मार देंगे और कुछ लोगों को मार देंगे जो इस्लाम नहीं फॉलो करते, तो उसको उसी टाइम क्या मिलेगा, वो इंद्र के पास चला जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा, या दूसरे को कन्वर्ट कर या किसी से जबरदस्ती विवाह कर या कुछ ऐसा कर वो कर देगा अगर, तो उसको क्या मिलेगा, और वो जिहाद के नाम पर इस्लाम के नाम पर 20-50 लोगों को मार देगा और उसमें अपने को निछावर कर देगा तो क्या मिलेगा उसको, स्वर्ग मिलेगा, इंद्र के पास जाएगा वो और वहां पर अनगिनत, वैसे तो उनकी गिनती है 72 उनके पास, बट ऊपर बहुत है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। वहां पर जन्नत में जो स्वर्ग बोलते हैं तो जन्नत के राजा का नाम नहीं बताया पर वो है स्वर्ग इंद्र ही, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उधर मिलती है। तो अब वो वहां मर मर के वहां जा रहे हैं और हमने सुना कि उनको उनके बारे में ये भी बताया कि अगर तुम किसी लेडी महिला के हाथों मर गए तो नहीं मिलेगा स्वर्ग, चाहे तुम कितने कुछ अच्छा कर लो। तो सीरिया में कुछ लेडीज ने अपनी फोर्स बना ली अपने अपनी रक्षा करने के लिए, तो वो आईएस वाले जब आतंकवादी वहां पहुंचे तो उन्होंने गन से उनको शूट करना शुरू कर दिया। तो भागे वो लोग कि भैया मैं बचपन से लोगों को मार रहा हूं उधर जाने के लिए, इनके हाथ से मर गया तो मैं 2 गज में जाऊंगा, मैं तो जन्म मिलेगा मुझे। तो वहां से वो सर पे पैर रख के भाग गए उधर से। और एक किसी भक्त ने भी बोला, भक्त ने नहीं, कि हमारे देश में बड़े सारे आतंकवादी मिलते हैं पहले, और अगर आप आतंकवादी मिलने के बाद मरने के बाद वो दफना देते हो तो वो तो आए इसलिए थे कि मैं जब दफना दूंगा तो मुझे कब्र से निकाल के अल्लाह मियां वहां ले जाएंगे, कहां जन्नत ले जाएंगे। तो किसी ने बोला कि इनको जला, इनको ना वो दफनाना बंद कर दो, इनको जलाना शुरू कर दो आतंकवादियों को, तो क्या होगा जब उनको पता चलेगा भाई ये जला रहे हैं इनको, तो जलाने से तो ये तो हिंदू रीति के हिसाब से हमारा हिसाब किताब कर रहे हैं, है ना, तो हम तो वहां जा नहीं पाएंगे, कहां जहां के लिए इतनी ट्रेनिंग ली हमने। तो इस सारा का सारा खेल वहां जाने तक का है। हमारे वेदों में पुराणों में कितनी कथाएं आती हैं कि स्वर्ग पहुंचना किसी तक, क्यों ऐसा क्या स्वर्ग में वो आपको बताएंगे नहीं ज्यादा, क्यों क्या होगा नहीं तो कई लोग जो है प्लानिंग करेंगे स्वर्ग जाने के, थोड़ा सा बता देते हैं स्वर्ग बहुत बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य राय जैसी बहुत है, मतलब ऐसे कह सकते हैं, और खाने पीने के लिए सब कुछ है, कल्प वृक्ष लगे हुए हैं, जो मांगो मिलता है, नींबू का पेड़ होगा तो भी आम मिल जाएगा आपको जो बोलोगे, और वहां पर उम्र जो है लंबी होती है लोगों की, भोग के लिए बहुत व्यंजन है वहां पर, हर समय नृत्य इत्यादि हो रहा है, खुशबू वहां परिजात वैसे वृक्षों की खुशबू चल रही है, सुंदर पानी हर जगह अमृत पी रहे हैं, सोमरस पी रहे हैं आनंद में, और वहां पर ये मल मूत्र त्यागना नहीं होता उधर, टॉयलेट्स नहीं है, आपको लगे नीचे आना पड़ता है साधन को, नहीं ऐसा नहीं, वो जो खाते पीते हैं वो सब ब्लड में तब्दील हो जाता है, मैं टेंशन नहीं है, हमारे देश में तो टेंशन ही चाहिए, सारी प्रॉब्लम पेट से हैं, हम खाना सब कुछ चाहते हैं, वो स्टोर जमा हो जाता है और उसके साथ बीमारियां निकलती हैं, वो सब यही सब आजकल समस्या चल रही है सारी बीमारियां, उधर ये नहीं है। तो जब वेदों में ये पढ़ा जाता है कि वहां पर इतना सुख है इतना कुछ है तो हर कोई सोचता है मैं भी वहां जाऊं, और अगर कोई इंद्र जैसा व्यक्ति बन गया तो उसको कितना घमंड होगा, सोच कर देखिए ये हमारे जो इंद्र हैं, हमारे क्या इससे पहले के भी जितने इंद्र हुए, जैसे पिछले बताने कि एक दूसरे नाम का इंद्र था, तो कितने प्रकार के इंद्र हुए, हर बारी इंद्र बदलते रहते हैं। जैसे ये मनवंतरों की गणना हो रही है, बताते हैं ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें 14 मनु होते हैं। जैसे हमारे एक दिन में 12 घंटे होते हैं, तो समझ लीजिए ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 घंटे होते हैं। और उन 14 मनुओं के नाम है, एक मनु लगभग आपके 71.4 युगास तक चलता है, मतलब चतुर्युग तक, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग, इस प्रकार जब 71.5 बार बीत जाता है, लगभग 72 लगा लीजिए, तो एक मनु का टाइम पूरा हो जाता है। इसमें जो ऋषि मुनि हैं, इसमें जो सप्त ऋषि हैं, इसमें ये भी बदल जाते हैं कुछ समय के बाद, जब जैसे कई बार तो एक मनु के अंदर ही बदल जाते हैं कल्प में, और कई बार ये मनुओं के बाद बदलते हैं, एक मनु में कई इंद्र बदल जाते हैं, उसका टाइम पूरा हो जाता है इस प्रकार। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 के 14 मनु बदल जाते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर मनु चल रहा है छठे का बात कर रहे हैं, तो उसके जो इंद्र है ये उस समय का प्रसंग सुनाया जा रहा है। ये कई बार हम कथा सुनते हैं तो आप देखिए कितने प्रकार के मनु हैं, मनवंतर हैं, और उनमें कितनी हर बार इंद्र आते हैं, और हर बार इंद्र की कोई ना कोई कथा होगी, और हर इंद्र कहीं ना कहीं वो गलती करता ही है घमंड के कारण, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा पोस्ट है। तो कई बार जब हम भागवत में कथा सुनते हैं पढ़ते हैं, और जब कोई सो कॉल्ड मटेरियली एडवांस लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं भागवतन को, तो कई बार समझते हैं यहां ये लिखा था, वहां ये लिखा है, वहां लिखा इंद्र ने ऐसा कर दिया, वहां लिखा उन्होंने ऐसा करा, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि ये प्रमाणिक नहीं है शास्त्र। तो ये केवल और केवल इसलिए होता है कि कई कई मनमंत्रों में कई कई प्रकार की घटनाएं हुई है ना, और ब्रह्मा जी के हर दिन में भगवान आते हैं, हर उसमें लीला होती है, कितने कितने अवतार होते हैं। तो कई बार प्रसंग सुनाते हुए कई लोग जैसे शुभदेव गोस्वामी जी को सुना रहे, तो कई बार संक्षिप्त में सुना रहे, उनका सात ही दिन है ना, तो कई घटनाएं संक्षिप्त में सुनाते हैं, कई चीजें पूरी टच नहीं करते। वही चीज रामायण में आपको पूरी मिलेगी, लेकिन जब यहां रामायण पढ़ेंगे तो आपको 2 चैप्टर में 3 चैप्टर में सब खत्म मिल जाएगा। या फिर अलग अलग मनवंतरों में जो कथा हुई तो कई बार उसका प्रसंग आता है, तो कई बार तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों और वैसा क्यों। तो ये कल्प भेद है, मनवंतर भेद है, युगांतर भेद है, तो इस प्रकार से कुछ घटनाएं होती हैं। अवतार तो भगवान के हर बार हो रहे हैं और हर बार लीलाएं हो रही, तो इस पर्टिकुलर लीला में बता रहे हैं। अब यहां से परीक्षित महाराज ने पूछा कि भगवान ऐसा क्या था कि असुरों ने पर अटैक कर दिया, तो पता चलता है कि दुर्वासा मुनि जो कि बहुत बड़े ऋषि मुनि हैं और ये गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, तो इन्होंने कई लोगों को शाप दिया। तो ये जा रहे थे तो इंद्र मिले इनको रास्ते में, तो उनको लगा हाँ बड़ा अच्छा काम करता लड़का, ठीक चला रहा राजभाट, तो उन्होंने अपनी ऐसी माला लेकर इंद्र को दे दी। अब इंद्र को भाई जिसको रोज रिस्पेक्ट मिलता है ना, रोज लोग रिस्पेक्ट देते हैं हाथ जोड़ के जिसके पास सामने आते हैं, तो कई बार उसको अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके ऊपर कृपा करने वाला है या उससे थोड़ा सा ऊपर है ओहदे में, तो बड़ा मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, मतलब उसको इतना क्या कहते हैं वैल्यू नहीं देता वो। तो क्या हुआ, जैसे उन्होंने उनको माला दी तो उनको लगा ठीक है, और ऐसे माला लेके वो हाथी को कहते चले यार, कोई दिक्कत, और हाथी तो हाथी है, उसने वो माला को घुमाया हुआ और पैरों में डाल दिया, उसको रोन दिया, उसको क्या था उसको, उसके लिए माला को यूज नहीं। दुर्वासा मुनि को बड़ा गुस्सा है कि मतलब ये इतना बड़ा हो गया कि हमें हमें पहचानने से मना कर रहा है हमारी, तो उन्होंने शाप दे दिया और ऐसा शाप दिया कि तुम दरिद्र हो जाओ, तुम तुम्हारा सारा ऐश्वर्य छिन जाए। ये इंद्र महाराज को कई बार शाप मिला, क्या क्या नहीं, कभी अपने बृहस्पति महाराज के सामने जो उनके गुरु हैं उनके सामने ये अहंकार दिखा देते हैं, कभी भगवान से लड़ पड़ते हैं परिजात फूल के चक्कर में, भगवान ने उनको पोस्ट पर बिठाया। एक बार सत्यभामा ने कहा मुझे फूल दे दो, वो बड़ा अच्छा फूल लगा हुआ है परिजात का, तो भगवान ने कहा पेड़ भी आता हूं क्या दिक्कत है, पेड़ उखाड़ा स्वर्ग से अपने यहां लगा दिया द्वारका में। इंद्र को बड़ा गुस्सा चढ़ा, हमारा पेड़ हमारी नर्सरी से, बस उनको गुस्सा चढ़ गया, वो भगवान से लड़ाई करने को आ गया। भगवान ने कहा कमाल है, मैंने तुम्हें पोस्ट पर बिठाया, मैंने तुम्हें सब दिया है, तो भूल गया वो सब, क्योंकि लोगों को लगा महाराज आप यहां से पेड़ ले गए, ये है कौन, उनको लगा ठीक है लड़ता हूं, लड़ाई करी पिटाई हुई फिर वापस आ गए, सॉरी गलती होगी, बाद में पता चलता है। और आपके वो गोवर्धन लीला में भी यही दिक्कत हुई उनको, उनको लगा मैं कर दूंगा सब कुछ, फाड़ दूंगा सबको, हटा दूंगा आग लगा दूंगा, वर्षा से सबको मार दूंगा, क्योंकि मेरी पूजा नहीं कर रहे लोग, फिर वहां का था, उधर भी भगवान ने उनको पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक सारा पानी खत्म हो गया उनकी टंकी में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो फिर उनको पैर पड़ने पड़े, भगवान करके माफी मांगनी पड़ी। कितनी कितनी जगहों पर ये सब करते हैं। तो एक बार ऐसी और भी कुछ किया था तो इनको शाप मिल गया, जाओ तुम अभी पृथ्वी पर जाकर पंजाबी बाग के नाले में एक सुअर के रूप में आओ। तो इनको सुअर का रूप मिल गया इंद्र को, और ब्रह्मा जी देख रहे हैं भैया बंदा कहां, हमारा पोस्ट नहीं, सीट खाली पड़ी है। तो ध्यान लगा ब्रह्मा जी, अब देखा कि अरे ये तो इधर पंजाबी बाग बैठे हैं, मच्छर बड़े होते हैं यहां तो ना। तो वो आए इनके पास, कहते भाई साहब ये क्या कर रहे हो, उनकी भाषा में बात करी, मतलब ऐसे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने उन्हीं की भाषा में बात करी, तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम राजा हो, तुम इंद्र हो, तुम भूल गए हो। कहते भूल गए हो, कहते तुम यहां पर ये मल मूत्र और इन सब गंदगी में बैठे हो, चलो वापस। तो कहते ऐसा है, देखो मैं यहां बिल्कुल सेटल हूं, बड़ा अच्छा फील कर रहा हूं, मेरी अपनी फैमिली है 5-7, इनसे मिलो, भाभी तुम्हारी है ना, तो उनसे इंट्रोड्यूस करा रहा, बच्चों को आओ बेटा पैर छुओ है ना। तो 25-30 बच्चे भी साथ में थे, सब हष्ट पुष्ट। ब्रह्मा जी ने कहा ये समझेगा नहीं भाई, जिस शरीर में है ना ये नहीं समझेगा। कहते ठीक है तुम इधर ही रहो। कहते मैं बताओ चलना, तो सबको साथ लेके चलना, मैं अकेला नहीं जा सकता, टिकट देंगे तो पूरे परिवार की दो वाइफ वाइफ तब चलेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं समझ आएगा इसमें, और कहते अगर ऊपर जाऊंगा तो ये मिलेगा खाने को मेरे को, जो इससे कम तो मैं खाता ही नहीं। तो ब्रह्मा जी को लगा ये शरीर में तो फायदा नहीं। तो हमारी स्थिति भी एक्चुअली इंद्र जैसी है, हम राजा नहीं है इंद्र लोक के, बट पोजीशन जितनी हमारे पास है, चाहे थोड़ी सी प्रॉपर्टी है चाहे ज्यादा प्रॉपर्टी, थोड़ा बैंक बैलेंस है चाहे जितना बैंक बैलेंस है ना, तो जितना भी है उस पर हम अपना अधिकार समझते हैं है ना, और उसकी वजह से हर किसी को घमंड रहता है। एक रिक्शे वाले को भी घमंड रहता है कि वो कहता है तू जानता नहीं मैं कौन हूं, ऐसा बात करता है वो भी, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं इस रिक्शे का मालिक हूं और मैं जहां मर्जी घूम सकता हूं गाड़ी। तो हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा, ज्यादा या कम, अहंकार रहता है। और रूपा जी बता रहे हैं कि जो ऑपुलेंस है ये इसका सबसे बड़ा कारण होता है। धन या ऐश्वर्य लोगों को अंधा बना देता है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है स्वयं, और वो अपने आचरण से दिखाते हैं कि सब लोग उनके पास आ रहे हैं, महाप्रभु आपसे मिलना चाहते हैं, महाप्रभु आप इस घर में आइए प्रसाद पाइए, महाप्रभु महाप्रभु हो रहा हर जगह। परमानंद पुरी एक बार मिलने आए तो उनको एक नोट भेजा, महाराज महाप्रभु परमानंद पुरी आए हैं और वो मिलना चाहते हैं आपसे। वो कहते हैं वो तो मेरे गुरु के समान है, वो क्यों मिलने आएंगे, बताओ कहां रहते हैं, हम खुद मिलने जाएंगे। अपने सारे एसोसिएट्स के साथ वो मिलने गए उनसे। भगवान दिखा रहे हैं कि भाई मैं सब कुछ हूं लेकिन फिर भी मैं अहंकार नहीं करता कि नहीं नहीं मेरे पास आओ। वो अपने गुरु का, उनको कहते हैं मेरे गुरु के समान है वो, तो स्वयं उठकर वहां गए उनसे मिलने के लिए। लेकिन जब व्यक्ति अहंकार वश या इन ऑपुलेंसेस की वजह से अंधा हो जाता, अंधा हो ही जाता है, तो फिर वो भेद नहीं करता, वो सबको समान समझता है कि सब मेरे पैर छू बस। और ये कारण बनता है शाप का, ये कारण बनता है व्यक्ति के पतन का। रूपा जी बोलते पतन का कारण बनता है, एक शब्द बता रहे हैं धनुमर्धा अंधा अंध, मतलब धन की वजह से अंधा हो जाता है व्यक्ति। जब तक हमारी नीड्स आवश्यकताएं की पूरी नहीं हो रही तो व्यक्ति आवश्यकताओं के लिए भागता है, और जब आवश्यकताओं से अधिक आ जाता है तो फिर इच्छाओं को पूरा करने के लिए भागता है, और जब इच्छाएं पूरी होने लगती हैं तो उसे उसकी वृत्ति चेंज हो जाती है, वो आसक्त हो जाता है, वो कह सकते हैं वो और अधिक उसमें उसकी एक्सटर्न हो जाता है, उसको इंजॉय करने के चक्कर में, फिर वो भेदभाव नहीं देता, फिर वो किसी को भी ऑफेंड कर सकता है। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कितनी ऐसी कथाएं आती हैं, जब कोई कमरे में आया, मतलब कोई मिलने आया राजा या कोई भगवान मिलने आया, तो लोग उठे नहीं, अपने आसन से नहीं उठे, और शाप मिल जाता है उन लोग। तो इसका कारण कई बार यही होता है, रोम हर्षन के साथ भी ऐसे हुआ, बलराम जी स्वयं आगे, जो स्वयं भगवान का था भी बलराम जी की कर रहे हैं, उनका भी भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जिनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं वही सामने आ गए तो उनको देख के खड़े नहीं हुए, भगवान ने उसी टाइम उनका सर काट दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को समझाने के लिए ये प्रसंग इसलिए है कि भाई हम भी छोटे मोटे कहीं ना कहीं इंद्र हैं, हम भी यही सब गलतियां करते हैं गुरु के प्रति वैष्णव के प्रति। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णव एवं संत पुरुषों के प्रति गंभीर होना चाहिए। जब ऐश्वर्य बढ़ जाता है तो घरों के बाहर बोर्ड लग जाते हैं। कौन से बोर्ड? कुत्तों से सावधान, चाहे है चाहे नहीं, लेकिन क्यों? ताकि कुछ डिस्टर्ब करने ना आए, खासकर साधु एंटर ना करे। श्रीमद् भागवतम के चौथे पंचम स्कंद में बोल रहे हैं, जैसे चौथा स्कंद है उसमें कह रहे हैं कि जिन परिवारों में संत लोग चरण नहीं रखते, वैष्णव आते नहीं, उनका अतिथि सत्कार नहीं होता, उनको पानी नहीं पूछा जाता, वो परिवार उस शुष्क वृक्ष की तरह है, सूखे हुए पेड़ की तरह, जिस पर अजगर इत्यादि होते हैं। तो कोई वैल्यू नहीं है ऐसे परिवार, तो चाहे कितने ऑपुलेंस हो कोई यूज नहीं है। कहते हैं यशाम संस्मरणार्थ पुंसा, जो लोग उन साधुओं का खाली ऐसे शुद्ध भक्तों का स्मरण भी करते हैं, कहते शुद्ध वगैरह, उनके घर शुद्ध हो जाते केवल एक बार घर से स्मरण करने से। कहते फिर इसकी तो बात ही क्या करें कि वो अगर घर में आ जाए, उनको स्थान दिया जाए, पानी दिया जाए, उनके चरणों का प्रक्षालन किया जाए, तो इसका तो लाभ की बात ही क्या करें। ये खाली स्मरण करने की बात कर, और उनका तो फिर कहा क्या जाए, खाली जहां बोर्ड लगे हैं जहां पर लोग अवॉइड करते हैं संतों का, वो बात अलग है कि आज उन संतों का उन जो साधु है उस तरह के साधु का कल्चर नहीं अपना रहे, एक कारण इसका यह भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरे पिताजी जो थे ना, क्योंकि जब उनके दोस्त नरेंद्र ने कहा कि चलो तुम्हें एक साधु से मिला, तो कहते हैं बचपन से बहुत साधु देखे, तो कई बार साधु जैसे अभी कुंभ लगता है कुछ होता है तो हम देखते हैं वहां पर जाकर दुनिया भर के साधु है ना, और क्या कर रहे हैं, नाना प्रकार की विभूति लगाए हुए है और तपस्याएं कर रहे हैं, और वो सब नशा भी कर रहे हैं, समझ रहे, हर तरह का नशा भी चल रहा है, तो इस तरह साधु की इमेज गिरती है ना। प्रभुपाद जी ने ऐसे साधु बनाए जो मांसाहार नहीं करते, नशा नहीं रखते, किसी तरह का अवैध संबंध नहीं करते, जुआ इत्यादि नहीं खेलते, इसमें लिप्त नहीं होते, और वो साधु लाल वस्त्रों में भी घूम रहे हैं, सफेद वस्त्रों में भी घूम रहे है ना। आप सोचिए इन चार नियमों का पालन इतनी बड़ी इस देश में, जहां की जो रिलीजियस कंट्री है कह सकते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रवचनकर्ता मठाधीश भी फॉलो नहीं करते इन चार नियमों को, प्रजा की तो बात ही क्या कहे। मतलब जो इस संस्था के भक्त लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते जपते जो उनके अंदर गुण आ जाते हैं और अपने आप ही उनके अंदर ये मांसाहार नशा इत्यादि छूट जाता है, ऐसे साधु ऐसे संत, बड़े हमारे छोटे छोटे साधु संतों की बात कर रहे हैं जो सफेद वस्त्रों में भी हैं, गृहस्थी भी चला रहे हैं, जो इन नियमों का पालन कर रहे हैं, ये उन बड़े बड़े गुरुओं से भी कई अधिक है। क्योंकि कई बार तो ये सब गुरुजन, अभी किस कल के उसमें पढ़ा हमने कि जो जहां पर भी कुंभ लगा उज्जैन में, तो वहां पर भी ऐसे कई लोग पहुंचे हैं जो या तो उसमें सफल नहीं हुए तो वहां चले गए, और कई लोग तो मैंने बताया ना कि कुछ क्रिमिनल कुछ गलत कर देते हैं तो उनको लगता है कि अब बचने के लिए कहां जाए, तो उनको लगता है कि बस यही एक ऐसा है इसमें कोई हाथ नहीं उठाएगा, और 20-50 शिष्य बन गए तो फिर कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो फिर वो इस प्रकार की अपनी वेशभूषा बना लेते हैं और पहचाने नहीं जाते। लास्ट टाइम ने बताया था एक बार ऐसे एक संत था, संत तो नहीं था क्रिमिनल था, जिसने बड़े कुछ गलत काम किए हुए थे, तो पुलिस उसको ढूंढ रही थी काफी लंबे समय से, इनाम भी था उसके ऊपर, बट वो मिल नहीं रहा था काफी टाइम से, तो पता चला बद्रीनाथ में बैठा हुआ वो, और बद्रीनाथ में अपनी वाइफ की बहन के नाम की सिम यूज करता है अपनी वाइफ को फोन करने के लिए कभी कभार, तो पुलिस ने ट्रेस किया उसको और पता चले बद्रीनाथ से फोन आता है उसको बार बार, तो पुलिस वहां पर पहुंची उसको ढूंढने के लिए, तो पुलिस कैसे पहुंची, वो भी साधु संतों की ड्रेस में पहुंची या सिंपल विजिटर्स के रूप में पहुंची और कहा स्वामी जी कैसे हैं आप, हाँ जी ठीक है आशीर्वाद, हाँ जी आशीर्वाद, कब से रह रहे हैं, हाँ जी इतना। फिर उनका इसको पहचानते हो, कहते हो तो मेरी फोटो है, कहते महाराज हम लोग सीबीआई से हैं, आपको साथ चलना है, बड़े घर चलना है आपको। तो फिर ऐसे लोगों ले जाते हैं बाद में। तो कहने का मतलब है कि इस संस्था में श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे साधुओं को निर्मित किया, केवल एक हरे कृष्ण महामंत्र से लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया। और जिस प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, स्वर्ग इत्यादि, जहां पर जाके ये सब समस्याएं होती हैं, या वहां ना भी जाए तो यहां पर भी होती है, धन ऐश्वर्य सुंदरता ये सारे के सारे हमारा अहंकार बढ़ाते हैं। सुंदरता भी हमारे अंदर अहंकार बढ़ाती है ना, धन भी हमारे अंदर अहंकार बढ़ा देता है ना, रूप शक्ति ऑपुलेंस ये सारी चीजें हम लोगों को झुकने में बाधा बनती है। और भक्त के लिए, भक्ति के लिए व्यक्ति को झुकना सबसे जरूरी चाहिए। जो जितना ज्यादा विनम्र होगा, कहते हैं ना जिस वृक्ष में जितने अधिक फल लगेंगे वो उतना झुका हुआ होगा। और इस प्रकार जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो ये सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाते हैं और इस प्रकार हम लोग बहुत आसानी से ये जो खतरनाक प्राउड ये जो चीजें हैं इससे बच सकते हैं। इस समय देश में नाना प्रकार की तरह से लोग आजादी मांगते फिर रहे हैं, है ना, सुना आपने मैंने, देश में आजादी चाहिए, देश से आजादी नहीं चाहिए, हमें इससे आजादी चाहिए, हमें उससे आजादी चाहिए। भाई आजादी तो 1947 में भी लोगों ने मांगी ना, तो उस आजादी से कुछ हुआ क्या? फिर सरकारें बदली, अपने लोगों की सरकारें थी, लोगों ने कहा जी इनसे आजादी चाहिए। फिर नए नेता आए, उन्होंने कहा जी हमें ये पर्टिकुलर पार्टी मुक्त देश बनाना है, हर व्यक्ति को एक दूसरे जो जिसको परेशान करता है उसको उससे आजादी चाहिए, किसी को मुहासों से आजादी चाहिए। तो क्लियर से लगाता है, मतलब जो चीज भी हमें दुख देती है, परेशानी देती है, डिस्टर्ब करती है, हमें उससे आजादी चाहिए, है कि नहीं? अब इस संसार का एक नेचर है कि यहां पर दुख मिलेंगे मिलेंगे, है कि नहीं? हर व्यक्ति यहां की समस्याओं से आजादी चाहता है, लेकिन इस दुखालय अशाश्वतम से आजादी नहीं चाहता। ये उसको इसका रास्ता नहीं मालूम कि मुझे लिबरेशन चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, है ना, हमें चाहिए आजादी, हमें यहां से आजादी चाहिए, हमें इससे आजादी चाहिए। अरे ठीक है तुम्हें आजादी चाहिए, बट उससे मिल गई, फिर तेरे को अपने पड़ोसी से आजादी चाहिए, फिर तुझे अपने घर में किसी से आजादी चाहिए, फिर तुझे अपने दुखों से आजादी चाहिए, फिर जो तुझे बीमारी लग गई तुझे उससे आजादी चाहिए, कैंसर हो गया उससे आजादी चाहिए, फिर ये जो शरीर इतना दुख दे रहा है, तो व्यक्ति बोलेगा मुझे शरीर से आजादी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके बोलने से नहीं होगा, आपको फिर कर्मों के आधार पर फिर से शरीर दिया जाएगा। तो आजादी कहां है, क्यों चाहता व्यक्ति आजादी? वो जो चीजें हमें परेशान कर रही हैं, हम चाहते कि उससे हमें मुक्ति मिल जाए। लेकिन जिस प्रकार के वातावरण में, एनवायरमेंट में हम रहते हैं, वहां पर इसकी बात नहीं होती है। इच्छा सब लोग ठीक कर रहे हैं, आजादी चाहिए, लेकिन वास्तव में देश भी गुलाम हुआ, उनसे मिली आजादी, सरकारों से मिल गई आजादी, अब किससे चाहिए आजादी? तो शास्त्र कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनसे आजादी चाहिए, देहात्म बुद्धि से आजादी चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि शरीर में हूं, इस प्रकार का मानने से आजादी चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो संसार में अगर किसी को आजादी चाहिए सुखी रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए, तो इन चीजों से आजादी चाहिए। पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, है कि नहीं? मौसम आएंगे, सर्दी गर्दी आएंगे और चले जाएंगे, शरीर मिलेंगे फिर मिलेंगे, ये चला जाएगा फिर आएगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन वो भगवान शास्त्र बता रहे, यत गत्वाना निर्वर्तन्ते तद धाम परमम। मेरे उस धाम में आने के बाद तो ये बोलिए मुझे इस संसार से आजादी चाहिए, मुझे देहात्म बुद्धि से आजादी चाहिए, मुझे अहंकार क्रोध लोभ इन सब चीजों से आजादी चाहिए। अगर इनसे आजादी मिल गई तो हम लोग उस संसार में चले जाएंगे, एंटर कर जाएंगे, जिसे वैकुंठा कहते हैं, जहां पर कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, वहां कोई आजादी नहीं मांगता, वहां व्यक्ति गुलामी मांगता है ना, वहां चाहते हैं कि हम गुलाम रहें, वहां चाहते हैं कि हमारा हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी रहे जो हमारे ऊपर शोषण करे, जो हमको सेवा दे, एकदम उल्टा कल्चर। तो इन चीजों से आजादी चाहिए, अहंकार से आजादी, नहीं तो इंद्र जो है वो फिर पछताएंगे, फिर काम करेंगे, उसके बाद फिर से इनका जन्म होगा पृथ्वी पर, या कहीं भगवान को ऊपर भी प्रमोट कर सकते हैं। तो इस संसार पुनरावर्ती अर्जुना बोल रहे हैं भगवान की, भैया ब्रह्मा जी से लेकर पाताल लोक तक जो 14 प्लैनेट सिस्टम है, 14 प्लैनेट सिस्टम, इन सब में समस्याएं हैं। कहां कहां तक जाओगे आजादी के चक्कर में? नहीं, इंडिया में प्रॉब्लम है, इंडिया से चाहिए आजादी। ठीक है भाई, तू पाकिस्तान चला, नहीं नहीं पाकिस्तान में जाना, कहां जाना चाहते हो, कौन से देश में जाना चाहते, उधर के देश के लोग परेशान है ना। कहते ना एयर कैनेडा यू विल बी हैप्पी, कैनेडा में फैमिली, एयर इंडिया यू विल बी हैप्पी, सब केवल ख्याल ही पलाओ। मृत्यु हर जगह है, बुढ़ापा हर जगह है, बीमारी हर जगह है, टैक्सेस हर जगह है, टैक्सी नहीं कर कर टैक्स हर जगह है, पड़ोसी हर जगह है, परिवार में 36 रहना ही रहना है, हर व्यक्ति दुखी करने वाला है संसार। हमने कर्म जो किए हैं उसका फल तो मिलेगा मिलेगा, चाहे वो परिवार का व्यक्ति दे, चाहे पड़ोसी दे, चाहे समाज दे, चाहे देश दे, परेशानी तो मिलनी है हर एक व्यक्ति को, उतनी एंजाइटीज तो होनी होनी है, चाहे तुम देश को लेकर रहो, चाहे हिंदू पाकिस्तान के मैच को लेकर रहो, उतना टेंशन मिलना ही मिलना है। तो इन सब से आजादी चाहिए। तो रियल फ्रीडम तब मिलेगा जब हम ग्रंथों की शरण में जाएंगे। इसमें लिखा है असली लिबरेशन, असली आजादी मिलेगी कैसे, इस आजादी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और अगर नहीं करी तो फिर से आना पड़ेगा, फिर आजादियां मांगते रहेंगे। एक प्लैनेट छोड़ दो, आप ऊपर जाने की कोशिश करो, चांद पे चले जाओ, वहां की अलग टेंशन होगी। पहली बार तो ऐसे जा नहीं सकते जैसे कोशिश कर रहे हैं। तो जितने भी प्लैनेट्स हैं कहीं पर भी चले जाए, बता दिया गया है कि सारे के सारे प्लैनेट्स में दुख है, मृत्यु है, तो कहां जाएं? जाएं तो जाएं कहां, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। वो कहां है? वो है भगवान का गोलोक वृंदावन, उधर नहीं सर। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ऐसे एक बार सुन ले इसके बारे में, गोलोक धाम पता नहीं है भी कि नहीं, वैकुंठ धाम पता नहीं है भी कि नहीं, है ना। ये इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि कभी घर में भी चर्चा नहीं हुई इस बारे में, अमेरिका के बारे में चर्चा हुई है कहां सेटल होना है, है ना, मॉरिशस में होना, उसके बारे में चर्चा हुई है, गोलोक धाम के बारे में चर्चा नहीं हुई, उसके गुणों के विषय में चर्चा नहीं हुई, वहां जो रहने वाली लिविंग एंटिटीज हैं उनके ऑपुलेंस के बारे में चर्चा नहीं हुई, है ना, वहां के बेनिफिट्स के बारे में चर्चा नहीं करी। तो जहां की चर्चा ही नहीं करी तो वहां के व्यक्ति इच्छा क्यों करेगा जाने की, है कि नहीं? तो इसलिए वहां की चर्चा करनी चाहिए, वहां जाने के रास्ते की चर्चा करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण गुण अनुवाद भगवान के गुण अनुवाद में लगना चाहिए, सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए परीक्षित महाराज की तरफ, ताकि हम लोग इस संसार से, इस देह से, इस देहात्म बुद्धि वाली चेतना से आजादी लेकर भगवान के धाम जाए। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी को है जिज्ञासा या प्रश्न? हाँ जी, माइक दे दीजिए।
हरे कृष्ण महाराज। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि स्वर्ग में जो है ऐश्वर्य बहुत है, हम जो कुछ खाते हैं उस वो डायरेक्ट जो है ब्लड बन जाता है, या जो भी हम चाहते हैं जिस पेड़ से जो भी फल चाहते हैं मिल जाते हैं, तो या स्वर्ग में ही जो है हमने देखा है कि वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो अश्विनी कुमार होते हैं, तो जब हमें ऐश्वर्य ही वहाँ पे मिलना है और ऐश्वर्य के लिए ही वो बना हुआ है, तो फिर उनकी वहाँ पे क्या जरूरत है?
डॉक्टर्स हैं वहां पर अश्विनी कुमार वगैरह, जड़ी बूटी वगैरह सब कुछ जानते हैं लोग, तो हमने बताया कि खून में तब्दील हो जाते, इसका मतलब ये बीमारी नहीं लगती, ऐसे नहीं लगते जुकाम हो गया परेशान घूम रहे हैं आज यहाँ हॉस्पिटल में अभी वहां हॉस्पिटल में गली गली में हॉस्पिटल, ऐसा नहीं होता, रेयरली होती है बीमारियां, लेकिन जब होती है तो ठीक भी कर देते हैं। हमने ये तो बोला नहीं, हम वैकुंठ की बात करें अगर तो वैकुंठ में नहीं है, स्वर्ग में तो है, हम तो बोल रहे हैं 14 प्लैनेट सिस्टम में आता है स्वर्ग आपका, तो वहां तो मिलेगा ऐसा कुछ। इसीलिए ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है, बाद में फिर से यहां के मेहनत करनी पड़ती है।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी आपने इंद्र के बारे में भी बताया इस क्लास में, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इंद्र भी भक्त हैं, और बेसिकली अगर वेदों की अगर कोई ये करे तो बहुत सारे मंत्र जो है ऋग्वेद और इंद्र की उपासना के बारे में मंत्र हैं। एट द सेम टाइम हम महाभारत में भी ये जानते हैं कि अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, नो एंड ही ऑलवेज, और उन्होंने बहुत हेल्प भी की भगवान की, तो ये थोड़ा सा विरोधाभास वाला थोड़ा कैरेक्टर है। तो इसके बाद थोड़ा हमने आपने थोड़े ये भी कुछ बताया कि वो भगवान के भक्त कैसे हैं।
देखिए ये जो पोस्ट है ना, स्पेशल पोस्ट है कुछ ब्रह्मा जी की, इंद्र की, वायुदेव, अग्निदेव, तो ये हायर प्लैनेट्स में जो लोग पृथ्वी पर अच्छे वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, अच्छे पुण्य करते हैं, खूब भक्ति भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को ना प्रमोट करते हैं भगवान और इंद्र जैसा पद दे देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी का पद भी बताते हैं, अगर कोई 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का अच्छे ढंग से पालन करता है तो फिर वो ब्रह्मा जी का पद पाने के काबिल हो जाता है। इंद्र का भी इसी तरह से कि कोई अच्छा पुण्य करता है, अच्छा वो करता है तो इंद्र बन जाते हैं। कई बार अगर इंद्र इस प्रकार के क्वालिटी का व्यक्ति नहीं मिलता जिसने इतने पुण्य किए हैं, तो भगवान स्वयं इंद्र की पोस्ट को ले लेते हैं जब तक कि कोई क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं मिलता। तो इंद्र जो है वास्तव में तो जो भी व्यक्ति देवता लोग हैं ये कहीं ना कहीं वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, या जो यहां से कुछ इच्छाएं कर गए हैं, भक्ति के साथ कुछ इच्छाएं रह गई, तो ऐसे लोग देवता लोग बन जाते हैं, अच्छी पोस्ट मिल जाती है। लेकिन वो लोग अपना रियलाइजेशन शेयर करते हैं भागवतम में कि बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू मेडिटेट ऑलवेज ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा बिकॉज ऑपुलेंस बहुत ज्यादा है वहां पर, हर समय आपके पास इजीली हर चीज अवेलेबल है, तो इसलिए कई बार वो वैष्णव मतलब वो भक्त देवता लोग अपनी जॉब करते करते जो उनको डिपार्टमेंट हेड बनाया है वो काम भी करना है तो वो उस काम में और एंजॉयमेंट में लगे रह जाते हैं, फिर वो नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनको वो मतलब वो, तो फिर वो चाहते कि अगला जन्म हमारा पृथ्वी पर दोबारा भारत भूमि पर, तो क्या होगा वहां कि हम लोग जो हमसे गलती हुई थी ना वो अब सुधार लेंगे, अब हम केवल भक्ति करेंगे और उसमें इच्छाएं नहीं रखेंगे, तो उससे क्या होगा वो प्रमोट हो जाएंगे वैकुंठ की तरफ, गोलोक की तरफ। तो ये जो जितने भी लोग हैं, जैसे आपने कहा अर्जुन के पुत्र रहे या, तो ये सब जब भगवान देवताओं को जो आपके इस पृथ्वी पर जब आक्रमण होता है, देवता लोग परेशानी में आते हैं, तो उनके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी फिर क्षीर सागर में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान प्लीज अवतार लीजिए, बहुत परेशानी में है लोग। तो भगवान ने उनको बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूं, आप देवताओं को बोल दो कि ये सब जाके पहले ही इस तरह से अपना वो कर लें। तो इनके पास इस प्रकार की शक्ति होती है कि ये ऊपर भी रहकर काम कर सके और नीचे भी रहकर काम कर सके, तो ये देवता लोग या अपने को एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो सारे देवताओं ने मीटिंग करी कि भैया आप क्या करना, चलो अवतार लें। तो फिर कोई किसी ने अंश अवतार में अर्जुन का रोल नीचे करा पुत्र के उसमें, तो किसी ने युधिष्ठिर का किया, किसी ने अभिमन्यु का किया, तो इस प्रकार ये सब लोग नीचे उतरते हैं। लेकिन ये सब जो भगवान के पार्षद हैं ये वही लोग हैं बट एम्पावर्ड या अपने को एक्सपेंड करके यहां इस तरह से पहुंचे, तो पर्टिकुलर लीला के लिए कुछ चीज के लिए आता है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत वो हो गए, ठीक है बहुत अच्छा पोस्ट है, बहुत बढ़िया है, अगर वहां से भी स्मरण कर रहे हैं भगवान को, और नेचुरली भगवान अगर कहते हैं आप अपना काम अच्छे ढंग से करोगे, गीता में भी जैसे बोल रहे हैं कि अपने नियत कर्मों को अगर कोई व्यक्ति करता रहे तो दूसरे के कर्म को करने से ज्यादा अच्छा है, तो उसमें उसकी गति है। उसी तरह ये लोग अपने डिपार्टमेंट्स में रहते हैं, अपने डिपार्टमेंट को अच्छा काम करते रहते हैं, और वो करते करते भगवान फिर इनको जब काम देके खुश होकर प्रमोट भी कर देते हैं वहां से। लेकिन अगर किसी का वो नहीं है, अपलाइंस में लगा रहा, स्मरण नहीं कर पाया ज्यादा, तो फिर उनको दोबारा मौका देते हैं शुद्ध भक्ति का। ठीक है जी,
राधे कृष्ण। प्रभु मुझे एक जिज्ञासा आपसे
जो आपने कहा साधु संन्यासियों को मान कर ये घर पे लाइए, उनको उनके चरण डलेंगे, अच्छा होगा। आज के युग में जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे किस्से सुनने को आते हैं, देखने को आते हैं कि साधु के रूप में ये हो गया या वो घर पे आ भी गए, इच्छा हमारी होती है मगर वो उसके बाद डिमांडिंग हो जाती है। हमने उनको चाय पिलाई, अन्न खिलाया, जो भी खिलाया, उसके बाद वो डिमांडिंग हो जाते हैं कि मुझे यात्रा पे जाना है, मुझे कंबल ले दो, मुझे ये ले दो, और वो अक्सर बेच रहे होते हैं, व्यसनों में पड़े होते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं, तो वो भावना जो है कहीं ना कहीं विचलित कर देती है कि क्या हम ये करें, चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते। वहां आज ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि हम तो चाहते हैं मगर ये माहौल देखते हैं तो मन थोड़ा वो परेशान हो जाता है।
हाँ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो इसमें ये देख सकते हैं कि जो इस तरह के संत लोग हैं उनको जब आप इन्वाइट करें घर में, उनका सत्कार करें, उनसे कहें कि कुछ कृष्ण कथा करो, है ना। अगर तो कृष्ण, क्योंकि साधु का मतलब कृष्ण भक्त, वो ऐसे नहीं कि फिर कुछ भी कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, तो वो अगर उसको बोलो कि कुछ कथा करो, अगर वो कथा जानता हो तो करेगा, कहो जी आज 15 मिनट कथा करो फिर हम आपको भोजन कराएंगे, है ना। तो वो कथा करने के लिए उसने कुछ पढ़ा होगा तो करेगा, अगर तो नकली साधु बनकर आया तो फिर वो अगली बार सबके पास ही आएगा ही नहीं, ये तो कथा पूछते हैं भैया, ये प्रश्न करते हैं मेरे से, ठीक है ना। तो या तो फिर वो आएगा तो कुछ पढ़कर आएगा, है ना, और फिर अगर पढ़ेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि मुझे अपना आचरण भी ठीक करना है, तो फिर वो आके कथा करेगा, कुछ करे तो फिर उसकी मदद करो कि ठीक है जी आप ये लीजिए, प्रसाद लीजिए, और आपको जहां जाना है मैं आपकी टिकट करा देता हूँ, है ना, स्लीपर क्लास में टिकट करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो पैसे मत दीजिए। जब फेथ हो जाए, विश्वास बढ़ जाए तब ठीक है, जब आपको मालूम है कि उस धन का सदुपयोग ही करेगा, ना कि बीड़ी सिगरेट कुछ पिएगा, चाय में भी नशा है तो चाय भी नहीं पीनी चाहिए साधु को, तो देखना चाहिए। पहले हमें भी मालूम होना चाहिए साधु को पहचानने की कला क्या है, आपने भी शास्त्र पढ़ेंगे तब आप साधु को रिकॉग्नाइज कर पाओगे, उसको यथा अनुचित मान सम्मान दे पाओगे। अगर आप ही नहीं जानते साधु कौन है, तो लाल कपड़ा तो 300 रुपये मिलता है बाहर, तो कोई भी पहनकर कहीं भी घूम रहे तो ठीक है। तो यही कारण है कि लोग कोई भी लाल कपड़ा पहने या कोई भी दाढ़ी वाला बढ़ा ले तो लोगों को लगता है कि ये साधु है, है ना, और फिर लोग फिर उनके द्वारा चीटेड फील करते हैं बाद में, तो ठीक नहीं। तो इसका मतलब पहले हमें भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रश्न ना करें, अगर है तो आप अलग से आके कर लेना, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय गुरु।